ओम शांति।
ओम शांति।
प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर स्वयं निराकार परमात्मा ने जो अमूल्य विश्व कल्याणी महावाक्य उच्चारे, उसी के आधार पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रस्तुत कर रहा है विश्व का अंतिम सत्य तथा भारत की प्राचीन दैवी संस्कृति का साक्षात्कार कराने वाला एक आध्यात्मिक महानाट्य सत्य महाभारत।
महाभारत की वास्तविकता प्रस्तुत कर मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति का अमूल्य ज्ञान प्रदान करने वाला एक अप्रतिम नाट्य सत्य महाभारत।
अंधश्रद्धा का पूर्णतः निर्मूलन कर यथार्थ श्रद्धा का ज्ञान एवं मानवीय जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य देने वाला विश्व का सबसे कल्याणकारी महानाट्य
सत्य महाभारत।
सत्य महाभारत। इस महानाट्य में भाग लेने वाले कलाकार इस प्रकार है। विशेष निवेदन, श्रीमती गौरी लागू।
प्रास्ताविक एवं अंतिम कथन, भ्राता राहुल सोलापुरकर।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की भूमिका, भ्राता निमिष तोटे।
महावीर अर्जुन की भूमिका, भ्राता सुहास कुलकर्णी। संगीत दिग्दर्शन तथा गायन, श्रीमती चारुशिला बेलसरे। विशेष सहभाग, भ्राता धनंजय साठे एवं भ्राता प्रमोद चिल्लार। आध्यात्मिक मार्गदर्शन, राजयोगिनी सुंदरी बहन जी एवं पद्मा बहन जी, ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र, मीरा सोसाइटी, पुणे।
निमित्त लेखक, निर्माता एवं निर्देशन, ब्रह्मा कुमार जगदीश दीक्षित।
ध्वनि मुद्रण, भ्राता मुकुंद फड़कले, स्टूडियो एलकॉम, पुणे, महाराष्ट्र। ओम शांति। आज आपको इस नाटक का सातवां भाग श्रवण करना है, मनुष्य सृष्टि चक्र एवं कल्प वृक्ष। इन दोनों का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि इसे प्राप्त करने से मनुष्य त्रिकाल ज्ञानी होता है, अर्थात भारत के संपूर्ण इतिहास का ही उसे ज्ञान प्राप्त होता है। इस सृष्टि चक्र के आदि में श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज्य था, उनके कारण भारत की महिमा ऊंची अवश्य होती है। परंतु भारत की सर्वश्रेष्ठ महिमा तब होती है जब स्वयं शिव भगवान भारत में आकर उसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान बनाते हैं।
भारत देश की महिमा महान, इसमें हारे शिव भगवान, जग का ये है तीर्थ स्थान, जग का ये है तीर्थ स्थान, परम पिता का जन्म स्थान, भारत देश की महिमा महान।
आओ प्रिय अनुज, स्वदर्शन चक्रधारी भव, त्रिकाल ज्ञानी भव, महाज्ञानी भव,
क्षमा करें ज्येष्ठ भ्राता, आज मुझे यहां उपस्थित होने में विलंब अवश्य हुआ है।
नहीं पार्थ, तुमने तो एक क्षण का भी विलंब नहीं किया है, क्योंकि इस विशाल सृष्टि चक्र में इस स्थान पर तुम्हारे आने का आज का क्षण नुंदा हुआ है, और यह भी निश्चित है कि उसी क्षण अनुसार ही तुम इस प्रकार भूतकाल में समाप्त होने वाले असंख्य कल्प में उपस्थित हुए थे, एवं भविष्य में भी अनेक कल्प इसी प्रकार तुम्हें उपस्थित होना है, क्योंकि इस सृष्टि चक्र में प्रत्येक क्षण की प्रत्येक घटना प्रत्येक कल्प में हूबहू पुनरावृत्त होती है। इसमें अंशमात्र भी भिन्नता नहीं आ सकती, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रत्येक कर्म 5000 वर्षों के उपरांत पुनः करता ही है।
हे मधुसूदन, इसका अर्थ ये हुआ कि भूतकाल में समाप्त होने वाले प्रत्येक कल्प में इसी समय इसी दैहिक रूप में एवं इसी वातावरण में मैं उपस्थित था, और भविष्य में प्रत्येक कल्प में मैं ऐसे ही उपस्थित रहूंगा। ओहो केशव, यह सृष्टि चक्र का ज्ञान तो अत्यंत आश्चर्यजनक है।
हे वीर धनंजय, ये सृष्टि चक्र का ज्ञान ही मनुष्य को त्रिकालदर्शी एवं त्रिकाल ज्ञानी की अवस्था प्राप्त करा देता है। अतः आज के स्वाध्याय में तुम्हें सृष्टि चक्र के साथ कल्प वृक्ष का ज्ञान भी प्राप्त करना है। पार्थ, सत्य तो यह है कि इस ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ कोई भी ज्ञान इस संसार में नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान ही आध्यात्म ज्ञान की परिसीमा है, अर्थात इसे प्राप्त करने से तुम अवश्य ही परिपूर्ण ज्ञानी होंगे, और तुम्हें परिपूर्ण ज्ञानी इसलिए होना है कि परमात्मा तुम्हारे जैसे कई मनुष्यों के सहयोग द्वारा इस सृष्टि चक्र को गतिमान करता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त यति है यहा अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। हे पार्थ, जो मनुष्य सृष्टि चक्र गतिमान करने में परमात्मा को सहयोग नहीं देता, अर्थात अपने प्रत्येक कर्तव्य का पालन नहीं करता, परंतु इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करता है, ऐसे पापी मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। अतः सृष्टि चक्र का ज्ञान प्राप्त कर इस पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा को सहयोग देना अत्यंत आवश्यक है।
हे ऋषिकेश, परमात्मा को सहयोग देना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि मैं वर्तमान समय उसकी भुजा बन चुका हूँ। अतः हे वासुदेव, सृष्टि चक्र का ज्ञान प्राप्त करना केवल आवश्यक ही नहीं परंतु अनिवार्य है।
हे कुरुनंदन, जो सृष्टि चक्र का ज्ञान प्राप्त करता है उसे स्वदर्शन चक्र का ज्ञान सहज ही प्राप्त होता है, अर्थात सृष्टि चक्र एवं स्वदर्शन चक्र का ज्ञान इन दोनों का अटूट संबंध है, क्योंकि इस सृष्टि चक्र में पुरुषोत्तम संगम युग पर जब आत्मा को अपने आदि दिव्य स्वरूप की स्मृति आती है, तो उसी क्षण आत्मा शंख चक्र गदा कमल इन अलौकिक अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी होती है। तब माया अपनी पूर्ण शक्ति के साथ उस पर आक्रमण करती है, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा अपने चक्र से माया का मस्तक ही पृथक कर उस पर आधा कल्प के लिए विजय प्राप्त कर लेती है। जिस प्रकार कई पुराण कथाओं में ये दृश्य होता है कि युद्ध करते समय असुर का मस्तक पृथक किया जाता है, परंतु वही मस्तक शरीर पर रख देने से असुर पुनः जीवित होता है, उसी प्रकार स्वदर्शन चक्र से मस्तक पृथक होने के उपरांत भी माया पुनः जीवित होती है, और जब माया जीवित होती है तब आधा कल्प का कालखंड जन्म मृत्यु के चक्र में व्यतीत करने से स्वदर्शन चक्रधारी को अपने आदि स्वरूप की पूर्णतः विस्मृति होती है। ये विस्मृति ही आत्मा को शक्तिहीन कर देती है, फलस्वरूप द्वापर युग में जब उसे साधारण मानव का रूप प्राप्त होता है तब माया पुनः उस पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर लेती है, अर्थात आत्मा पराजित होने से आधा कल्प उस पर माया का आधिपत्य होता है। तथापि इस सृष्टि चक्र में चार युग समाप्त होने के उपरांत जब पुनः संगम युग आता है तब परमात्मा द्वारा आत्मा को अपने आदि स्वरूप की स्मृति प्राप्त होती है। इस स्मृति से आत्मा पुनः स्वदर्शन चक्रधारी का दिव्य रूप धारण कर अपने चक्र द्वारा माया का मस्तक पृथक कर आत्मा पुनः माया जीत होती है। इस प्रकार इस साकार सृष्टि पर पुरुष प्रकृति एवं माया के कारण स्मृति विस्मृति जय पराजय सुख दुख एवं वृद्धि क्षय ये विभिन्न प्रकार के खेल निर्माण हुए हैं। पार्थ, वृद्धि एवं क्षय का खेल तो कल्प के अंत में ही होता है, जिस क्षण वृद्धि पूर्ण हो जाती है उसी क्षण तीव्र गति से क्षय की प्रक्रिया आरंभ होती है। वृद्धि एवं क्षय होना यह तो प्रकृति का नियम ही है, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।
मैं कुछ समझा नहीं केशव, किसमें वृद्धि होती है एवं किसका क्षय होता है?
देखो अनुज, जिस प्रकार फसल प्राप्त करने के पश्चात किसान उसी फसल में से कुछ बीज आगामी फसल के लिए अवश्य शेष रखता है, उसी प्रकार ये मनुष्य सृष्टि का खेल चलते आया है। नूतन विश्व से पुराना विश्व एवं पुनः पुराने विश्व से नूतन विश्व निर्माण होता है, इस प्रकार ये प्रक्रिया कल्प कल्प चलती ही रहती है। जब यह विश्व नूतन होता है तब अत्यल्प मनुष्य आत्माएं यहां होती है, और जब यही विश्व पुराना होता है तब मनुष्य आत्माओं की भारी मात्रा में वृद्धि होती है। महाविनाश के उपरांत मनुष्य सृष्टि का पुनः क्षय हो जाता है, अर्थात अत्यल्प आत्माएं इस धरा पर रहती है, क्योंकि बहुतांश मनुष्य आत्माएं अपने मूल स्थान पर अर्थात ब्रह्मलोक प्रस्थान करती है। पुनः मनुष्य सृष्टि की पूर्ण वृद्धि होने के लिए 5000 वर्षों का काल व्यतीत होता है। यह सृष्टि चक्र का अमूल्य ज्ञान परमात्मा प्रत्येक कल्प में मनुष्य आत्माओं को प्रदान करता है, परंतु हे गुरुनंदन, काल चक्र के प्रवाह में इस अमूल्य ज्ञान की विस्मृति होकर शेष रहता है उसका स्मृति चिन्ह। इस स्मृति चिन्ह को द्वापर युग से सभी मनुष्य देखते आए हैं, परंतु जब तक परमात्मा इस धरा पर अवतरित नहीं होते तब तक उस स्मृति चिन्ह का गुह्य रहस्य कोई भी स्पष्ट नहीं कर सकता।
हे मधुसूदन, वो कौन सा स्मृति चिन्ह है और उस स्मृति चिन्ह में ऐसा कौन सा गुह्य रहस्य है जो कोई भी मनुष्य स्पष्ट नहीं कर सकता?
भरत श्रेष्ठ, वो स्मृति चिन्ह है स्वस्तिक। स्वस्तिक में ही मनुष्य सृष्टि का एवं परमात्म ज्ञान का सार समाया हुआ है। किसी भी मंगल कार्य में स्वस्तिक का महत्व असाधारण होता है। स्व अर्थात आत्मा, चार युगों में आत्मा के चार भिन्न भिन्न स्थिति का अर्थात स्व की स्थिति का प्रतीक स्वस्तिक है। आत्मा बिंदु रूप होने के कारण स्वस्तिक के चारों विभागों में बिंदु दर्शाते हैं। अनुज, ये बिंदु रूप आत्मा ही अनेक शरीर द्वारा सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग, इन चार युगों की विशाल एवं चक्राकार यात्रा करती है। इस यात्रा का न कोई आदि है न अंत। ये माना जाता है कि आत्मा की यात्रा सतयुग से आरंभ होती है और कलियुग के अंत में इस यात्रा का एक चक्र पूर्ण होता है। पुनः परमात्मा आकर इस यात्री को यात्रा की प्रेरणा देता है। पार्थ, ये स्वस्तिक स्वदर्शन चक्र का भी प्रतीक है। स्वस्तिक की चार भुजाएं आत्मा के सतो प्रधान, सतोगुणी, रजोगुणी एवं तमो प्रधान, इन चार गुणों का सूचक है। इसके चारों विभाग समान होने के कारण प्रत्येक युग की काल मर्यादा समान काल की अर्थात केवल 1250 वर्षों की है। संपूर्ण कल्प की आयु 5000 वर्षों की है। स्वस्तिक में चार युगों के उपरांत पांचवा गुप्त युग है पुरुषोत्तम संगम युग। इस पांचवे एवं गुप्त युग का महत्वपूर्ण ज्ञान भी स्वस्तिक में है, क्योंकि केवल इसी युग में परमात्मा का अवतरण होता है। इन पांच युगों का ज्ञान प्राप्त करने से ही भारतवर्ष के पूर्ण इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है, और जो पूर्ण इतिहास का ज्ञान प्राप्त करता है वही स्वदर्शन चक्रधारी है। अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी ही भारतवर्ष के संपूर्ण इतिहास का वास्तविक तज्ञ है। आज का कितना भी बुद्धिमान इतिहास तज्ञ क्यों ना हो, वो भारतवर्ष का केवल आधा ही इतिहास जानता है जो कि द्वापर युग से आरंभ होता है। अब परमात्मा द्वारा भारतवर्ष के संपूर्ण इतिहास का, इस विशाल नाटक का अथवा पूर्ण चक्र का ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य को तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त होता है। वो आदि से अंत तक का विशाल नाटक दिव्य दृष्टि से एवं साक्षी भाव से देख सकता है। इस संसार की किसी भी घटना का उस पर कोई भी विपरीत परिणाम नहीं होता। पार्थ, ऐसे मनुष्य आत्मा को अडोल, स्थित प्रज्ञ एवं साक्षी दृष्टा भी कहा जाता है।
हे पद्मनाभ, ये साक्षीपन की अवस्था महान है, और दिव्य दृष्टि से पूर्ण नाटक देखना ये ज्ञान का ऊंचा लक्ष्य है। परंतु
ये परंतु ही तुम्हारी वाणी का प्रतिबंध है। पार्थ, कहो क्या कहना चाहते हो?
हे ऋषिकेश, पृथ्वी के इस विशाल रंगमंच पर चलने वाला यह संपूर्ण नाटक मैं दिव्य दृष्टि से देखना चाहता हूं। क्या आप मुझे दिव्य दृष्टि देकर अल्पकाल में इस नाटक का साक्षात्कार करा सकते हैं?
अवश्य पार्थ, अवश्य। मैं तुम्हें इस महानाट्य का साक्षात्कार अवश्य करा सकता हूं। उसके लिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि भी प्रदान करता हूं। मेरी नैनों में झांको पार्थ, मेरी नैनों में झांको।
हे वासुदेव, आपकी नैनों से अद्भुत किरण आ रहे हैं। जो किरण मेरी नैनों में समा रहे हैं।
अब तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है अनुज। इस दिव्य दृष्टि द्वारा तुम्हें 5000 वर्षों के इस महानाट्य का अवलोकन करना है। अतः हम दोनों ही इस विशाल रंगमंच से अर्थात इस साकार सृष्टि से पृथक होकर आकाश तत्व से इस नाटक का अवलोकन करेंगे। अब अंतकरण से श्रवण करो भरतश्रेष्ठ। मैं तुम्हें कोई एक रामायण, महाभारत, किसी एक महात्मा की अथवा किसी एक युग की कथा का दर्शन नहीं कराना चाहता हूँ, परंतु मैं तो तुम्हें संपूर्ण मनुष्य सृष्टि के आदि से अंत तक की अनेक युगों की अनेक महात्माओं की सत्य कहानी अर्थात भारत वर्ष के संपूर्ण इतिहास का ही दर्शन कराना चाहता हूँ। परंतु हे पार्थ, इस विश्वनाट्य के अवलोकन पूर्व मुझे तुमसे एक वचन चाहिए।
मुझे विश्वास है कि आप मुझे ऐसे ही वचन में बद्ध करेंगे जिसमें मेरा कल्याण है। अतः वचन प्रकट करे वासुदेव।
पार्थ, मुझे वचन दो, मुझे वचन दो कि तुम इस महानाट्य का साक्षी भाव से ही अवलोकन करोगे, अर्थात कोई भी दृश्य देखने से तुम्हारे मन पर विपरीत परिणाम नहीं होना चाहिए।
मधुसूदन, मैं वचन देता हूं कि इस महानाट्य को मैं साक्षी भाव से देखूंगा। आप निश्चिंत रहे, ये भरतवंशी का वचन है।
तो चलो पार्थ, हम दोनों आकाश तत्व में प्रस्थान करेंगे।
हे मधुसूदन, हम तो कुछ क्षणों में ही आकाश तत्व में आ पहुंचे हैं।
हे भरतश्रेष्ठ, अब तुम्हें एक विशाल एवं आश्चर्यकारक महानाट्य देखना है, अर्थात तुम्हें विराट विश्वरूप दर्शन करना है।
चक्र ये मनुष्य मात्र का कौन जानता कैसे वो फिरता। निराकार है इसका ज्ञानी, पूर्ण चक्र का ज्ञान वो देता।
स्मृति चिन्ह है स्वस्तिक प्यारा, युगों युगों का खेल है सारा। चार युगों की चार भुजा है, संगम युग है इसमें ये न्यारा। परम ज्ञान ये परम पिता का, कल्प के अंत में प्रदान होता। चक्र स्वदर्शन विष्णु का वह, साधक उसको धारण करता। गुह्य ज्ञान ये सृष्टि चक्र का, इसे न कोई आदि अंत। कल्प कल्प का चक्र ये अविरत, काल है इसका अनादि अनंत।
अनादि अनंता।
सृष्टि चक्र ये मनुष्य मात्र का कौन जानता कैसे वो फिरता। निराकार है किसका ज्ञान पूर्ण चक्र का ज्ञान वो देता, ज्ञान वो देता,
ज्ञान वो देता, ज्ञान वो देता, ज्ञान वो देता, ज्ञान वो देता, ज्ञान वो देता, ज्ञान वो देता, ज्ञान वो देता, ज्ञान वो देता, ज्ञान वो देता।
अनुज, 5000 वर्ष समाप्त हो चुके हैं। ईस्वी सन पूर्व 3000 वर्षों की घटना है, जबकि इस भारत में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्याभिषेक होने के उपरांत उन्हें विश्व महाराजन एवं विश्व महारानी घोषित किया गया। वही राज्याभिषेक का दृश्य तुम्हें प्रथम देखना है। अब इस महानाट्य का प्रथम अंक आरंभ हो चुका है पार्थ। देखो देखो अनुज, उस राज्याभिषेक का मंगलमय दृश्य देखो।
ओहो वासुदेव, ये कितना सुंदर एवं दिव्य समारोह है। यहाँ के नर नारी विविध रंगों के वस्त्र एवं विविध अलंकारों से श्रृंगारित है। भिन्न भिन्न वाद्यों द्वारा मधुर तथा स्वर्गीय संगीत का मैं अनुभव कर रहा हूँ। परंतु हे वासुदेव, विश्व महाराजन एवं विश्व महारानी लक्ष्मी नारायण है कहाँ?
वो देखो अर्जुन, दोनों का भी अपना सिंहासन ग्रहण करने अर्थ आगमन हो रहा है। उनका आगमन पथ विविध पुष्पों से सजाया है। सभी देवी देवताएं श्री लक्ष्मी नारायण पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। यही है स्वर्णिम क्षण, जबकि उन्होंने अपना राज्य सिंहासन ग्रहण किया है। यही से सतयुग का आरंभ होता है पार्थ। विश्व में जो भी आश्चर्य है उसमें सर्वश्रेष्ठ आश्चर्य है परमात्मा द्वारा निर्माण किया गया ये सतयुग। यहाँ अखंड सुख शांति, पवित्रता एवं मानवीय मर्यादा होती है। साथ ही साथ एक ही चक्रवर्ती राजा का निर्विघ्न राज्य होता है। पार्थ, आज जिनकी पूजा मंदिरों में होती है वही चैतन्य अवस्था में इस भारत वर्ष के राज्याधिकारी थे। यही मनुष्य सृष्टि का आदि एवं प्राचीन काल है। अब वो दृश्य देखो अनुज।
हे राधा रमण, यहाँ के प्रत्येक देवता का मुखमंडल तेज पुंज एवं दैदीप्यमान है। प्रत्येक देवता के मुखमंडल पर सुख शांति एवं संतुष्टता की झलक मैं देख रहा हूँ। इतना सुख शांति एवं पवित्रता युक्त समाज मैंने कभी भी नहीं देखा। यहाँ प्रासाद तो सुवर्ण के हैं ही, परंतु सुवर्ण के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के हीरे भी मैं देख रहा हूँ। कितने वैभवशाली एवं सुंदर ये भारत भूमि थी केशव। हे पुरुषोत्तम, इस सुंदर भारत का रचयिता केवल सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा ही हो सकता है। कोई भी देहधारी ऐसी रचना कदापि निर्माण नहीं कर सकता। जो सबसे सुंदर है वही सर्वोत्तम रचना निर्माण कर सकता है।
पार्थ, इसी समय तुम जो देवी देवता देख रहे हो वही कलयुग के अंत में पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियां थे। तब परमात्मा द्वारा उन्होंने अपनी आत्मा में दैवी संस्कार निर्माण किए थे। वही सुख शांति एवं मर्यादाओं के संस्कार प्राप्त करके ही इनका सतयुग में जन्म हुआ है। पार्थ, यहाँ न कोई देह अभिमान है न पांच विकार। फलस्वरूप सभी आत्माएं एक दूसरे के साथ कर्म संबंध में आते हुए भी कर्म बंधन निर्माण नहीं होता। इसी प्रकार यहाँ का समाज कर्म बंधन मुक्त, देह अभिमान मुक्त एवं पांच विकारों से मुक्त होने के कारण सभी देवात्माएं जीवन मुक्ति में होती है। इसे ही स्वर्ग कहते हैं भरत श्रेष्ठ। स्वर्ग के विषय में मनुष्य की कल्पना कुछ भी हो, परंतु स्वर्ग की वास्तविकता केवल ये सतयुगी भारत ही है।
हे श्रीनाथ, इस स्वर्ग में अप्राप्य ऐसा कुछ भी नहीं है। तथापि एक त्रुटि अवश्य है, और वो त्रुटि यही है कि यहाँ एक भी मंदिर नहीं है।
पार्थ, यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति ही देवी अथवा देव होने के कारण प्रत्येक निवास स्थान ही मंदिर है। जब ऐसे मंदिर में चैतन्य देव ही निवास करते हैं तो यहाँ न किसी जड़ मूर्ति की आवश्यकता है न किसी मंदिर की। फलस्वरूप यहाँ कोई भी कर्मकांड होते ही नहीं।
हे मधुसूदन, मनुष्य सृष्टि के इतिहास में उच्च कर्म देव देवताओं के ही माने जाते हैं, अर्थात उनका कुल भी सर्वोच्च होगा। ऐसे सर्वोच्च कुल का नाम मैं अवश्य प्रतीत करना चाहता हूँ।
भरत श्रेष्ठ, यहाँ के सभी मनुष्य दैवी कुलोत्पन्न होते हैं। जिस श्रेष्ठ कुल का नाम है सूर्यवंशी कुल, प्रत्येक देवता के मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट के साथ पवित्रता का स्वयं प्रकाशित प्रभामंडल भी होता है। पार्थ, संपूर्ण भारत में एक धर्म, एक भाषा एवं एक ही चक्रवर्ती राजा का प्रशासन होने के कारण न किसी प्रकार का युद्ध है न कलह, फलस्वरूप यहाँ सेना दल की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्थ, सतयुगी प्रजा का प्रत्येक कर्म न्यायपूर्ण होने के कारण यहाँ न राजा को कोई न्याय देना पड़ता है न ही कोई न्यायालय होता है। सतयुग में न तन की व्याधि है न मन की व्याधि है, जनता सभी को निरोगी कांचनमय काया प्राप्त होती है। प्रत्येक देवता की आयु 150 वर्षों की होती है और इस युग की आयु केवल 1250 वर्षों की है। यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण की 8 वंशावली का राज्य होता है। ये सतयुगी भारत ही शिव परमात्मा की श्रेष्ठ रचना है। पार्थ, वो केवल सतो प्रधान सृष्टि की ही रचना करता है, फलस्वरूप इस युग में कोई भी विकार होता ही नहीं। जब गृहस्थ ही पवित्र है तो संन्यास का प्रश्न ही निर्माण नहीं होता। समझ गए पार्थ, यही है वो सतयुगी भारत जिसका गायन है डाल डाल पर सोने की चिड़िया। मनुष्य सृष्टि के इतिहास में सतयुगी मानव ही सर्व गुणों से परिपूर्ण एवं सर्वश्रेष्ठ होता है। इसी के कारण आज भी उस सत्य मानव की सत्य नारायण के मंगल रूप में पूजा होती है। पार्थ, ऐसे थे पुजारी मानव के पूज्य पूर्वज, जहाँ संपूर्ण सुख शांति पवित्रता एवं मानवीय मर्यादा थी। ऐसा स्वर्णिम युग 1250 वर्षों के उपरांत समाप्त होता है। धनंजय, इस सूर्यवंशी कुल का वैभव देखते देखते इसकी विस्मृति ना हो कि परिवर्तन सृष्टि का अटल नियम है। अब इस दृश्य का तनिक ध्यान से अवलोकन करो, क्या परिवर्तन हो चुका है।
हे गोपाल कृष्ण, मैं देख रहा हूँ कि जहाँ सुवर्ण के प्रासाद थे वहाँ चांदी के प्रासाद भी निर्माण हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। केशव, मैं इस भारत के वैभव की वृद्धि देखना चाहता हूँ। यहाँ तो वैभव का क्षय हो रहा है, इस प्रकार का परिवर्तन होने का क्या कारण है।
गुरुनंदन, अब ये मनुष्य सृष्टि 1250 वर्ष पुरानी हो चुकी है, अतः इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो निश्चित होना ही है। यहाँ से आरंभ होता है त्रेता युग। देख रहे हो पार्थ, यहाँ राज सिंहासन पर बैठे हैं श्री राम और श्री सीता। श्री लक्ष्मी नारायण की तुलना में श्री सीताराम का तन मन धन पवित्रता वैभव इनमें थोड़ा क्षय अवश्य होता है, अर्थात यहाँ मनुष्य आत्मा की पवित्रता की दो कला न्यून होती है। देवताओं के इस कुल को चंद्रवंशी कुल कहा जाता है। त्रेता युग के अंत में जनसंख्या 33 कोटि हो जाती है। पार्थ, इसी के कारण भारत में 33 कोटि देवी देवताओं का गायन है। यहाँ श्रीराम की 12 वंशावली का राज्य शासन होता है। इस युग की काल मर्यादा 1250 वर्षों की होती है।
केशव, इस त्रेता युग में सुख शांति अवश्य है, परंतु अपार सुख शांति और वैभव तो केवल सतयुग में ही होता है।
भरत श्रेष्ठ, सतयुग त्रेता युग में संपूर्ण सुख शांति एवं पवित्रता होने के कारण दोनों युग को ब्रह्मा का दिवस कहा जाता है। केवल इन्हीं दो युग में एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक कुल एवं एक ही चक्रवर्ती राजा होता है, जिसके अधिकार में राज्य सत्ता के साथ धर्म सत्ता भी होती है। दोनों युग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, वहाँ अन्य कोई धर्म होता ही नहीं। यहाँ सुख ही सुख होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के मुखमंडल पर स्मितहास्य होता है। इसी के कारण देवी देवताओं के चित्र सदा हर्षित देखने में आते हैं। पार्थ, जब 2500 वर्ष समाप्त होते हैं तब ये त्रेता युग भी समाप्त होता है। जब ये त्रेता युग समाप्त होता है तब ना सूर्यवंशी कुल होता है ना चंद्रवंशी। इन दो कुलों की समाप्ति पर आदि सनातन देवी देवता धर्म भी समाप्त होता है, अर्थात देवताओं का राज्य समाप्त होने से स्वर्ग का वैभव भी पूर्णतः समाप्त होता है।
हे पद्मनाभ, इन दो युगों में भारतवर्ष कितना श्रेष्ठाचारी था, कितनी पवित्रता एवं सुख शांति थी भारत में। देवताओं का तन मन धन पवित्र होने के कारण ही द्वापर से उनका गायन पूजन होता है।
अनुज, जब त्रेता युग समाप्त होता है तब ब्रह्मा का दिवस भी समाप्त होता है और ब्रह्मा की रात्रि आरंभ होती है, अर्थात यहीं से आरंभ होता है द्वापर युग। पार्थ, मेरी ओर नहीं वसुंधरा की ओर देखो।
हे लक्ष्मीकांत, यहाँ के वैभव एवं वातावरण पूर्णतः परिवर्तित हो चुका है। कहाँ गए वो श्रेष्ठाचारी देवी देवता जिन्होंने संपूर्ण विश्व में ही पवित्र वातावरण निर्माण किया था। यहाँ पूजा पाठ, जप जाप्य, होम हवन आदि धार्मिक कर्मकांड आरंभ हो चुके हैं, जो कि सतयुग त्रेतायुग में अंश मात्र भी नहीं थे। हे पद्मनाभ, कहाँ गया वो देवताओं का प्रभा मंडल जो आज भी चित्रों में देवताओं के रत्नजटित मुकुट के साथ चंद्रमा के भांति दर्शाया जाता है। मैं देख रहा हूं कि इस भारत का अधिकाधिक चारित्रिक पतन हो रहा है। यदि भारत में सदाकाल के लिए सतयुगी देवता ही रहते तो कदाचित ये पतन की घड़ी कभी आती ही नहीं।
नहीं पार्थ, मैंने कहा ना, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। यहाँ प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता ही है। एक क्षण ना मिले दूसरे क्षण से। इस परिवर्तन के कारण ही तुम जो अब साधारण मानव को देख रहे हो उसमें बहुतांश देवी देवताओं की आत्माएं हैं। जन्म मृत्यु के चक्र में देवी देवताओं की पवित्रता की एक एक कला का क्षय होता है, तत्पश्चात देह अभिमान भी निर्माण होता है। देह अभिमान के कारण ही आत्मा में 5 विकारों की उत्पत्ति होती है, 5 विकार नर के एवं 5 विकार नारी के। ऐसा दशमुखी रावण इस नाटक में खलनायक का सूक्ष्म रूप धारण कर निर्माण होता है। पार्थ, ये रावण ही देवताओं को उनके दैवी सिंहासन से खींचकर साधारण मानव के रूप में परिवर्तित करता है। ये किसी को भी ज्ञात नहीं कि भारत वर्ष का दैवी स्वराज्य एवं स्वर्ग नष्ट कर नर्क स्थापन करने वाला ये रावण ही मनुष्य सृष्टि का सबसे पुराना शत्रु अथवा खलनायक है। जब द्वापर युग आरंभ होता है तब इस रावण का कार्य भी आरंभ होता है, अर्थात 5 विकारों के कारण ही मनुष्य से विकर्म होते हैं और विकर्म के कारण ही मानसिक एवं शारीरिक भोग भोगने पड़ते हैं। जब दुख का निवारण मनुष्य नहीं कर सकता तब अंत में भगवान की अथवा परमात्मा की स्मृति आती है, तत्पश्चात समस्त कर्मकांड आरंभ होते हैं। इसी का नाम भक्ति है पार्थ, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति आरंभ होने का मूल है मानवी मन का दुख, दुख का मूल है 5 विकार, 5 विकारों का मूल है देह अभिमान और देह अभिमान का मूल है अपने अनादि गुण एवं आत्म स्वरूप की विस्मृति। समझ गए पार्थ, समझ गए भक्ति कैसे आरंभ होती है?
हे पद्मनाभ, मैंने यह अवश्य प्रतीत किया है कि भक्ति मनुष्य को देहाभिमान से मुक्ति नहीं दे सकती। देहाभिमान से मुक्ति केवल निराकार परमात्मा ही दे सकता है, अतः द्वापर युग में सर्वप्रथम उसकी ही पूजा होनी चाहिए।
तुम्हारा विचार सर्वथा योग्य है। भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम शिवलिंग की ही स्थापना होती है। सभी मनुष्य द्वापर युग के आरंभ में निराकार परमात्मा की शिवलिंग के रूप में ही पूजा करते हैं, जिसे अव्याभिचारी भक्ति कहा जाता है। पूजा पाठ एवं अभिषेक करने अर्थ शिवलिंग की प्रतिष्ठापना प्रथमतः राजा विक्रमादित्य द्वारा होती है। अनुज, आज मैं और एक रहस्य प्रकट करता हूँ। ये राजा विक्रमादित्य मेरा ही 21वां जन्म है। राजा विक्रमादित्य ही शिव का प्रथम पुजारी है, तत्पश्चात ही शिव के अनेक पुजारी निर्माण होते हैं। इस प्रकार हे भरतवंशी, जो पूज्य थे वही पुजारी होते हैं। भारतवासियों को अपने मूल एवं वास्तविक धर्म को इसी द्वापर युग से विस्मृति होती है। देवताओं जैसी दिव्यता एवं पवित्रता मनुष्य के कर्म में ना रहने से धर्म के नाम में परिवर्तन होता है। पार्थ, सतयुग त्रेतायुग की थी पूज्यों की संस्कृति और द्वापर से निर्माण होती है पुजारियों की संस्कृति। दोनों संस्कृति में महत अंतर है पार्थ, महत अंतर है। जब पूज्यों की संस्कृति होती है तब केवल एक ही धर्म होता है, अर्थात एक मूल धर्म से ही अनेक धर्म निर्माण होते हैं।
हे मनमोहन, एक धर्म से अनेक धर्म कैसे निर्माण होते हैं, कब निर्माण होते हैं, तथा प्रत्येक धर्म का धर्म संस्थापक कौन है, इसका परिपूर्ण ज्ञान मैं प्रतीत करना चाहता हूँ।
हे अर्जुन, इसके लिए तुम्हें मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। देखो पार्थ, वर्तमान समय समस्त धर्म एक विराट वृक्ष के भांति है। किसी भी वट वृक्ष को देखो अनुज, उसका बीज कितना छोटा परंतु उस बीज से कितना विशाल वृक्ष निर्माण होता है। उसी प्रकार बीज रूप परमात्मा से ही विविध धर्मों का ये विशाल कल्प वृक्ष निर्माण होता है। यह वृक्ष उल्टा है क्योंकि इस वृक्ष का बीज परमात्मा परम धाम में है और वृक्ष साकार सृष्टि में है। पार्थ, इस वृक्ष का प्रथम पर्ण तो मैं हूँ, इसी के कारण चित्रों में बाल कृष्ण पीपल के पर्ण पर होता है। सतयुग त्रेता युग में एक धर्म होने के कारण इस वृक्ष से एक भी शाखा निर्माण नहीं होती। द्वापर युग से भिन्न भिन्न धर्म स्थापन होना आरंभ होता है। जैसे परिवर्तन सृष्टि का नियम है, वैसे भिन्नता भी सृष्टि का नियम है। पार्थ, कोई भी वृक्ष देखो, एक शाखा ना मिले दूसरी शाखा से। प्रत्येक धर्म का अपना अपना स्थान उच्च होता ही है। जिस प्रकार सितार से शहनाई श्रेष्ठ कहना अज्ञान है, उसी प्रकार किसी एक धर्म से दूसरा धर्म श्रेष्ठ है ये कहना भी अज्ञान है अनुज। यह अज्ञान ही धार्मिक कलह की जड़ है। अब पृथ्वी की ओर देखो, 2500 वर्ष पूर्व की घटना है, जबकि धर्मात्मा इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना होकर इस कल्प वृक्ष की पहली शाखा निर्माण हुई है। इसी प्रकार 2250 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की दूसरी शाखा, तो 2000 वर्ष पूर्व धर्मात्मा येशु ख्रिस्त द्वारा तीसरी शाखा निर्माण हुई है, और अंत में 500 वर्ष पूर्व गुरु नानक द्वारा सिख धर्म की अंतिम शाखा निर्माण हुई है। पार्थ, धर्म, उपधर्म, अनेक पंथ, मठ आदि से यह कल्प वृक्ष विशाल होता है।
नहीं पद्मनाभ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि ये अनेक धर्म, अनेक राज्य मानवीय जीवन में तनाव एवं अशांति निर्माण करते हैं। एक धर्म तथा एक राज्य ही स्थायी शांति का आधार है।
पार्थ, भारत में अनेक धर्मों का अस्तित्व होने के उपरांत भी एकता निर्माण हो सकती है, परंतु उसके लिए सभी के हृदय मंदिर में यही भावना रहे कि ये समस्त धर्म भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प है, परंतु पुष्पों का बागबान एक ही परमात्मा है। यदि इन पुष्पों से एकता का गुलदस्ता बनाया जाए तो विश्व में भारत और ही शोभिवंत होगा। पार्थ, ये मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष भिन्नता के कारण ही निर्माण होता है। यदि इसमें भिन्नता निर्माण नहीं होगी तो रमणीकता भी निर्माण नहीं होगी। प्रत्येक मानव का अपना अपना धर्म है, प्रत्येक मानव के अपने अपने विचार एवं धारणाएं हैं। पार्थ, ये भी तो चिंतन करो, अनेक धर्म निर्माण नहीं होंगे। अनेक धर्म निर्माण नहीं होंगे तो परमात्मा सभी धर्मों से एक धर्म की स्थापना कैसे करेगा? प्रिय अनुज, इस विशाल नाटक में जो कुछ होना है उसे कोई नहीं टाल सकता। अतः ये सदा ध्यान रहे कि ये पूर्व नियोजित नाटक है। जैसे प्राकृतिक वृक्ष की वृद्धि होती है, वैसे ही इस कल्प वृक्ष में धर्मों की होने वाली वृद्धि में कौन प्रतिबंध कर सकता है? जिसे इस कल्प वृक्ष का यथार्थ ज्ञान है, वो केवल ज्ञानी ही नहीं परंतु महाज्ञानी है। उसके मन में क्यों, क्या, कैसे, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों हुआ है, ये प्रश्न कदापि निर्माण नहीं होते। इसे ही साक्षी भाव कहते हैं। पार्थ,
हे ऋषिकेश, मैंने देखा कि सतयुग के आदि से त्रेता युग के अंत तक मनुष्य आत्मा का यथावकाश पतन होते आया है, परंतु जैसे ही द्वापर युग से आत्मा में 5 विकार निर्माण होते हैं तो पतन अधिकाधिक होता है।
अनुज, जब ईसवी सन 750 वर्षों के आसपास इस द्वापर युग की समाप्ति होती है, द्वापर युग के आरंभ में मनुष्य आत्मा के पास पवित्रता की 8 कला होती है, और जब यह युग समाप्त होता है तब पवित्रता की समस्त कला भी समाप्त होती है। जब समस्त कला समाप्त हो जाती है तो द्वापर का वैभव भी समाप्त हो जाता है, अर्थात परमात्मा की दृष्टिकोण से यह मनुष्य सृष्टि पूर्णतः पवित्र होती है। अब ये दृश्य देखो पार्थ, भारत के वैभव का कितना पतन हो चुका है।
नहीं नहीं श्रीनाथ, नहीं, मैं इस भारत के वैभव का पतन नहीं देख सकता। क्या कारण है इस पतन का?
पार्थ, आत्मा का पतन ही इसका मूल कारण है। आत्मा का पतन होने से ही युग परिवर्तन होता है और युग परिवर्तन से ही वैभव में पतन होता है। ये मनुष्य सृष्टि का चक्र ही इसका यथार्थ दर्शन है। अनुज, सतयुग में रसोई के पात्र सोने के थे, क्योंकि आत्मा की गुणवत्ता सोने जैसी थी। अर्थात संपूर्ण मनुष्य सृष्टि चक्र में सतयुगी समाज प्रथम वर्ग का मानना चाहिए। त्रेता युग में बहुतांश पात्र चांदी के थे, तब आत्मा की गुणवत्ता चांदी जैसी हो जाती है। फलस्वरूप त्रेता युगी समाज द्वितीय वर्ग का मानना चाहिए। ये तो सभी को ज्ञात है कि द्वापर युग में बहुतांश पात्र ताम्र एवं पीतल के थे, अर्थात आत्मा की गुणवत्ता ताम्र पीतल जैसे हो जाती है। फलस्वरूप द्वापर युग का समाज तृतीय वर्ग का मानना चाहिए। और वर्तमान समय तो सभी देख रहे हैं कि इस कलयुग में अर्थात लोह युग में मानव लोहे के पात्रों का उपयोग कर रहा है। अब यह कहने की आवश्यकता नहीं कि लोह युग में आत्मा की गुणवत्ता लोह जैसी हो जाती है, अर्थात कलयुगी समाज चतुर्थ वर्ग का मानना चाहिए। सिद्धांत यही है कि जहां मनुष्य आत्मा की गुणवत्ता का पतन होता है, वहां उसके शरीर सहित अन्य साधनों की गुणवत्ता का भी पतन होता है। भरत श्रेष्ठ, सतयुग की तुलना में कलयुगी सर्वसाधारण मनुष्य आत्मा की गुणवत्ता कनिष्ठ हो चुकी है, और वो गुणवत्ता कितनी कनिष्ठ हो चुकी है उसके लिए ये आगामी दृश्य अवश्य देखो।
हे वासुदेव, मैं ये क्या देख रहा हूं? कहां गई वो चार आश्रम की मर्यादा? पांच विकारों के कारण ही मनुष्य अधिक तमोप्रधान हो रहा है। द्वापर युग की तुलना में यहां अनेक युद्ध होने के कारण अशांति ही अशांति है। कितना अशांत एवं दुखी वातावरण है यहां। ऋषिकेश, कहां खो गई है भारत वर्ष की सुख शांति?
ये तो केवल कलयुग का आरंभ है भरत पुत्र। ये तो माया की कमाल है। माया भिन्न भिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचाकर मनुष्य आत्मा को अपने मोहजाल द्वारा पथभ्रष्ट कर रही है। माया के कारण ही मनुष्य तमोगुणी होता है। इस माया के कारण ही घोर नरक कलयुग का आरंभ हो चुका है। यहां माया अर्थात रावण 1250 वर्षों का हो जाता है। समस्त मनुष्य सृष्टि को ही अपने वश करके वो अपना राज्य निर्माण करता है। ये दुष्ट रावण मानव की पवित्रता एवं मर्यादाओं के पंख ही काट देता है। पार्थ, मानव का मर्यादाहीन आचरण ही उस रावण की विजय है। मानव के कनिष्ठ एवं विकारी संकल्प उसकी विजय है। मानव का भ्रष्टाचार उसकी विजय है। इस सृष्टि में दुख, अशांति, कर्म भोग, आकस्मिक मृत्यु एवं कलह निर्माण होना ये भी रावण की विजय है। ये रावण अर्थात पांच विकार मानव मात्र के पतन की जड़ है। देखो अनुज, परमात्मा पुरुषोत्तम संगम युग पर मनुष्य आत्माओं को उद्धारित आत्मा भव का वरदान देता है, तो रावण पतित आत्मा भव का श्राप देता है। परमपिता परमात्मा ने कल्प पूर्व के संगम युग पर मनुष्य आत्माओं की झोली 16 कला से परिपूर्ण की थी, परंतु वही झोली अदब पतन करते करते रावण ने रिक्त कर दी है। पार्थ, पूर्णतः रिक्त कर दी है।
हे मधुसूदन, इस अधब पतन को प्रतिबंधित करने का कुछ तो उपाय अवश्य होगा।
भरत श्रेष्ठ, इसी अधब पतन को प्रतिबंधित करने अर्थ इस महानाट्य में संत महात्माओं की महत्वपूर्ण भूमिका आरंभ होती है। इसी युग में उनकी अधिक आवश्यकता होती है। द्वापर युग की तुलना में कलयुग में अधिक संत महात्माएं जन्म लेती है। शास्त्रों का ज्ञान और डूबते हुए समाज की स्थिति देखने के उपरांत समाज को नवीन मार्गदर्शन करने अर्थ प्रत्येक संत महात्मा अपना अपना ग्रंथ निर्माण करते हैं। वे समाज में आध्यात्मिक जागृति कर समाज के पतन को प्रतिबंध कर रहे हैं। पार्थ, मनुष्य आत्माओं के पतन को प्रतिबंध करना, यही संत महात्माओं की इस महानाट्य में महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि उनकी निर्मिति ना होती तो कलयुग का विनाश कब का हो जाता। इस पतित संसार में संत महात्मा ही भारत के आधार स्तंभ होते हैं। अतः इन गुरु और महात्माओं का भी समाज पर अपार ऋण है। उनके प्रति भी मन में सम्मान एवं आदर अवश्य होना चाहिए, क्योंकि गुरु के कारण ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है।
हे मकरंद, अब तक मैंने ये परीक्षण किया है कि संत महात्माओं ने आध्यात्मिक जागृति करने के उपरांत भी वर्तमान समय इस समाज का भारी मात्रा में अधपतन हुआ है।
भरत श्रेष्ठ, तुम्हारा परीक्षण एवं कथन यथार्थ है। इस अधपतन का मूल कारण माया ही है। ये माया भी पराक्रमी है। इसी माया ने संपूर्ण सुख शांति एवं वैभव युक्त भारत को संपूर्ण दुखी, अशांत एवं वैभवहीन किया है। पार्थ, ये वही भारत भूमि है जहाँ संपूर्ण पवित्र सुख शांतिमय सतयुग था, परंतु काल चक्र के प्रवाह में माया ने मनुष्य पर ऐसा प्रहार किया है जो सतयुगी देवात्माओं को भी जन्म मृत्यु के चक्र में भिन्न भिन्न शरीर धारण कर कलयुगी नरक में निवास करना पड़ता है। पार्थ, कहां तन मन धन एवं सुख शांति से संपन्न सतयुग और कहां दयनीय अवस्था प्राप्त होने वाला ये कलयुग। यहां भारी मात्रा में मनुष्य निर्धन है, पूर्णतः निर्धन है। जिनके पास धन है उन्हें ना धन की शाश्वती है ना तन की। इस प्रकार मानवी जीवन ही अशाश्वत हो चुका है।
हे पद्मनाभ, वर्तमान समय संपूर्ण विश्व में ही अशाश्वत परिस्थिति निर्माण हुई है।
हे भरतवंशी, विश्व की ये अशाश्वत परिस्थिति देखकर मैं तो यही कथन करूंगा कि आज का मानव प्रतिकूल परिस्थिति एवं काल के इस प्रवाह में ऐसी जीवन नौका में बैठा है जिसकी कोई शाश्वती नहीं है। यहाँ भारी मात्रा में आकस्मिक मृत्यु होने के कारण वो मृत्यु के प्रति अत्यंत भयभीत है। इसमें मुख्य भय है आतंकवाद का। पार्थ, जितना आतंकवाद का भय है उतना ही पांच तत्वों का भी भय है। यदि कल वर्षा नहीं होगी तो मानवीय जीवन कैसा व्यतीत होगा? धरणी कंप होगा तो कितनी जीवित हानि होगी? इस प्रकार आज का मानव जीवन मृत्यु के कगार पर खड़ा है। अनुज, विश्व को सबसे बड़ा भय है अणु युद्ध का। यदि एक ही समय समस्त अणुशक्ति का मानव संहार के लिए प्रयोग हो जाए तो क्या होगा इस विश्व का? कौन रक्षा करेगा इस विश्व की? कौन मुक्त करेगा सभी को इस भय बंधन से? इस प्रकार समस्त मनुष्य सृष्टि ही तीसरे एवं अंतिम महायुद्ध से भयभीत है। पार, अंतिम महायुद्ध से भयभीत है?
नहीं केशव, नहीं, ये महायुद्ध होना ही नहीं चाहिए। विश्व की महासत्ताओं ने युद्ध का मूल कारण ही नष्ट करना चाहिए, क्योंकि आज तक का यही सिद्धांत है कि युद्ध से इस विश्व का अकल्याण ही होते आया है।
नहीं अनुज, ये अंतिम युद्ध अनिवार्य है। ये सदा ध्यान रहे कि प्रत्येक युद्ध का मूल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, इनमें से निश्चित रूप से कोई एक विकार है। अर्थात इस विकार के कारण ही मनुष्य के मन में युद्ध के विचार आते हैं। इसके उपरांत ही युद्ध होता है। समस्त दुष्कृत्यों की, विकर्मों की, पाप कर्मों की एवं अनेक दुखों की जड़ ये विकार रूपी रावण ही है। वर्तमान समय इसी रावण राज्य की अर्थात माया की छाया समस्त विश्व में छा गई है। अब कलयुग में मानव मर्यादाहीन है। मानवीय मर्यादाओं का भान उसे रहा ही नहीं, वो माया के पूर्णतः अधीन हो चुका है। पार्थ, जिस परम पिता परमात्मा ने स्वर्गीय भारत वर्ष में स्वर्ग निर्माण किया था, उसी भारत वर्ष को मनुष्य ने माया के अधीन होकर रौरव नरक में परिवर्तित किया है। इस प्रकार जो भारत हिरे तुल्य था वो वर्तमान समय कौड़ी तुल्य हो चुका है।
हे वासुदेव, मानव को स्वयं की अर्थात आत्मा की विस्मृति हो गई है, फलस्वरूप परमात्मा की भी विस्मृति हो गई है। इतना ही नहीं, परंतु उसे अपने आदि देवों की अर्थात प्रथम पूर्वजों की यथार्थ स्मृति नहीं है। कहां वो सतयुगी मानव और कहां कलयुगी मानव। आश्चर्य तो यह है कि दोनों भी इस समय मंदिर में हैं। हां केशव, दोनों भी इस समय मंदिर में हैं। सतयुगी मानव जड़ होते हुए भी पूज्य है, तो कलयुगी मानव चैतन्य होते हुए भी पुजारी है। कितना महत अंतर है केशव, कितना महत अंतर। अब मेरी बुद्धि में आया कि चार युग क्यों निर्माण होते हैं। संकल्प के अनुसार ही मनुष्य का आचरण या चरित्र का परिवर्तन होता है, और उसी अनुसार युग भी परिवर्तित होते हैं। सतयुग से त्रेता युग, त्रेता युग से द्वापर युग और द्वापर युग से कलयुग, इस प्रकार तीन युगों का परिवर्तन मनुष्य के आत्मिक पतन द्वारा होता है। तो आत्मिक उद्धार द्वारा केवल परमात्मा ही केवल परमात्मा ही कलयुग को सतयुग में परिवर्तित करता है। यदि परमात्मा प्रत्येक युग में अवतरित होगा तो भिन्न युग निर्माण होना असंभव है। उसका अवतरण होता ही है केवल कलयुग के अंतिम चरण में, अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर। अतः संभवामी युगे युगे कहना यथार्थ नहीं है, परंतु संभवामी संगम युगे कहना ही यथार्थ है।
ओ हो अर्जुन, अब तुम्हारी अंतरात्मा में परमात्म ज्ञान की ज्योत पूर्णतः प्रज्वलित हुई है। ऐसा ही महान पुरुषार्थ करते रहो। अनुज, तुम्हारा विचार सागर मंथन अत्यंत उत्तम है। हे पार्थ, जो कुछ ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे वाणी द्वारा अवश्य प्रकट करो।
हे पद्मनाभ, मुझे यह ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि जब मनुष्य नर होता है तब यह साकार सृष्टि नरक होती है, और मनुष्य ही जब देवत्व पद प्राप्त करता है तब यह साकार सृष्टि भी स्वर्ग होती है। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि नूतन विश्व संपूर्ण पावन, पुनः वही विश्व काल के प्रवाह में जितना पुराना होगा उतना अवश्य ही पतित होगा। उसे पुनः पावन करने अर्थ परमात्मा का अवतरण अनिवार्य है। परमात्मा प्रकृति को अधीन करके सतो प्रधान सतयुगी पावन सृष्टि निर्माण करता है, परंतु हे मधुसूदन, उसी सृष्टि को मानव प्रकृति के अधीन होकर यथावकाश कलियुगी पतित सृष्टि में परिवर्तित करता है। यही परमात्मा और मानव में महान अंतर है। अब पावन क्यों होना है यह भी मेरी बुद्धि में आया है। पावन आत्मा को अधिक सुख शांति प्राप्त होती है, तो पतित आत्मा को अधिक दुख अशांति प्राप्त होती है। यही सिद्धांत मैं इस कलयुग में देख रहा हूं। कलयुग में विकर्म होने से मनुष्य आत्मा को अपरंपार दुख है केशव, अपरंपार दुख है। अतः सभी की प्रार्थना यही है, हे परमात्मा, हे भगवान, हे पतित पावन, हमें दुख से मुक्त करो, हमें दुख से मुक्त करो।
सभी की प्रार्थना परमात्मा ने स्वीकार की है भरत श्रेष्ठ, फलस्वरूप उसका दिव्य अवतरण हो रहा है।
धरा के रंग मंच पर देखा एक नजारा है, जिसको सभी खोज रहे थे वो ही आज पधारा है।
धरा के रंग मंच पर बड़ा सृष्टि की ओर दिव्य गुण थे चारों ओर, स्वर्ग बड़ा सृष्टि की ओर दिव्य गुण थे चारों ओर। कल्प बाद पुण्य आत्मा को आके मिला सहारा है, जिसको सब ही खोज रहे थे वो ही आज पधारा है।
विश्वधरा के रंग मंच पर देखा एक नजारा है, विश्वधरा के रंग मंच पर देखा एक नजारा।
भरत श्रेष्ठ, परमात्मा का ब्रह्मा तन में अवतरण होना यही आगामी दृश्य तुम्हें देखना है। ये दृश्य केवल दृश्य ही नहीं, परंतु इस विश्व में जितनी भी महान घटनाएं हो चुकी है उसमें सबसे महान घटना एवं सबसे महान समाचार है परमात्मा का अवतरण। अब तुम्हें वही परमात्मा अवतरण का अलौकिक दृश्य देखना है। वो देखो अर्जुन, सर्वशक्तिमान ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा ब्रह्मा तन में अवतीर्ण हुआ है, और स्वयं शिव परमात्मा ब्रह्मा मुख से अपनी दिव्य वाणी प्रकट कर रहे हैं। इसे अंतकरण से श्रवण करो।
निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम।
इस प्रकार परमात्मा का अवतरण होते ही उसने दिव्य वाणी द्वारा स्वयं का सारांश में परिचय दिया है।
हे मधुसूदन, परमात्मा का ये अवतरण कितना साधारण रीति होता है। कैसे प्रतीत करेंगे सभी मनुष्य इस अवतरण को? इस अवतरण को प्रतीत करना मनुष्यों के लिए कठिन है। कौन विश्वास करेगा कि एक साधारण गृहस्थ के शरीर में सर्वशक्तिवान परमात्मा ने प्रवेश किया है?
भरत श्रेष्ठ, यही परमात्मा अवतरण की विशेषता है। कोटि कोटि मनुष्यों में किसी एक को उसका अभिज्ञान होता है। यदि परमात्मा और उसके अवतरण का ज्ञान सभी को होता तो श्रीमद् भगवद गीता में ये महावाक्य कदापि नहीं आते। अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। अर्थात मैं मानव सदृश रूप में अवतरित होता हूँ तब मूढ़ लोग मेरा उपहास करते हैं, वे मेरे दिव्य स्वरूप को प्रतीत नहीं कर सकते। भरत श्रेष्ठ, भगवान के इस अवतरण को यथार्थ प्रतीत करना सहज नहीं है। सूक्ष्म परमात्मा को यथार्थ रीति प्रतीत करने के लिए बुद्धि भी सूक्ष्म चाहिए। भारत वर्ष में सभी मनुष्य जड़ शिवलिंग एवं जड़ शिव मंदिर को जानते हैं, परंतु इस विशाल संसार में अत्यल्प मनुष्य ही जानते हैं। जब शिव का अवतरण ब्रह्मातन में होता है तो वही ब्रह्मातन शिव का चैतन्य मंदिर होता है। अतः इस चैतन्य शिव के चैतन्य मंदिर को यथार्थ रीति जानो पार्थ।
हे पद्मनाभ, मैंने इस चैतन्य शिव को एवं उसके चैतन्य मंदिर को अर्थात ब्रह्मा को यथार्थ रीति जाना है। इतना तो मुझे अवश्य ज्ञात है कि परमात्मा जन्म मृत्यु से मुक्त होने के कारण उसे अपना कर्मजन्य शरीर तो होता ही नहीं, अतः परकाया प्रवेशी उसके अवतरण की यथार्थ विधि है, जिस अवतरण के दृश्य का कुछ क्षण पहले मैंने अवलोकन किया है।
हे धनंजय, तुम कोटि कोटि आत्माओं में परम भाग्यशाली आत्मा हो, क्योंकि तुमने परमात्मा के अवतरण को यथार्थ रीति जाना है। पार वो देखो, वसुंधरा पर एक अलौकिक दृश्य, जिस दृश्य को देखने के लिए आज भी कई योगी पुरुष प्रयत्नशील है।
ओ हो, मधुसूदन, शंख चक्र गदा कमल इन चार अलंकार सहित श्री विष्णु का साक्षात्कार प्रजापिता ब्रह्मा को हो रहा है। केशव स्वयं विष्णु के मुख से दिव्य संस्कृत वाणी प्रकट हो रही है।
पार, ब्रह्मा को अपने ही आदि स्वरूप का साक्षात्कार हुआ है। श्री विष्णु के मुख से यही संस्कृत वाणी प्रकट हो रही है। अर्थात मैं चतुर्भुज विष्णु तुम्हारा ही सतयुगी आदि स्वरूप हूं। चतुर्भुज विष्णु के साक्षात्कार अनेक साधकों को हुए हैं, परंतु अहम चतुर्भुज विष्णु ततत्वम ये आश्चर्यकारक शब्द श्री विष्णु ने कभी नहीं उच्चारे। ये शब्द ही परमात्म ज्ञान का सारांश है। पार्थ, अब इस ब्रह्मा का यथार्थ अभिज्ञान प्राप्त करो। यही मनुष्य सृष्टि का अलौकिक पिता है, यही वास्तव में ब्रह्मा है।
परंतु हे मधुसूदन, सर्वसाधारण मनुष्य इसे ब्रह्मा मानते ही नहीं, क्योंकि इसे तो एक ही मुख है। सर्वसाधारण मनुष्यों की मान्यता यही है कि ब्रह्मा को चार मुख होते हैं।
भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार चार मुख किसी को थोड़े ही होते हैं। चार मुख का आध्यात्मिक रहस्य यही है कि परमात्मा ने ब्रह्मा को जो ज्ञान दिया उसे ब्रह्मा ने विश्व के चारों दिशा में विस्तारित किया। पार्थ, कलयुग के अंतिम चरण में ही परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, तब उन्हें ब्रह्मातन की आवश्यकता होती है। ये निश्चित है कि परमात्मा पतित संसार में एवं पतित शरीर में ही प्रवेश करेंगे, अर्थात ब्रह्मा के शरीर में ही प्रवेश करेंगे। अतः ये निश्चित है कि परकाया प्रवेशी निराकार परमात्मा के अवतरण की यथार्थ विधि है। चतुर्भुज विष्णु का दिव्य साक्षात्कार होने के उपरांत परमात्मा ब्रह्मा को सतयुगी मनुष्य सृष्टि का साक्षात्कार कराते हैं। उसी समय परमात्मा ब्रह्मा के प्रति महावाक्य उच्चारण करते हैं। हे वत्स, तुम्हारे द्वारा ही ऐसी स्वर्गीय सृष्टि इस धरा पर निर्माण करनी है, अर्थात तुम ही प्रजापिता ब्रह्मा हो। पार्थ, ब्रह्मा को तीसरा साक्षात्कार होता है कि अणुयुद्ध द्वारा कलियुगी सृष्टि का महाविनाश हो रहा है। इन सभी साक्षात्कार में स्थापना पालना विनाश का ज्ञान अवश्य है। साक्षात्कार तो केवल भविष्यकालीन घटनाओं को प्रतीत करने अर्थ किया जाता है। केवल साक्षात्कार से स्थापना का कार्य संपन्न नहीं होता। पार्थ,
हे श्याम सुंदर, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि परमात्मा सतयुग स्थापना का कार्य किस प्रकार संपन्न करते हैं।
हे गुरुनंदन, 60 वर्षों से भी अधिक काल समाप्त हो चुका है। निराकार परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा नूतन सृष्टि की स्थापना करने अर्थ ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्म ज्ञान ग्रहण कर अपने जीवन में उसे जो धारण करते हैं तथा राजयोग का अभ्यास भी करते हैं, वे है ब्रह्मा की अलौकिक संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण एवं ब्राह्मणिया, अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियां। उनके द्वारा ही परमात्म ज्ञान समस्त विश्व में अन्य आत्माओं को दिया जाता है। ये परमात्म ज्ञान एक दिव्य स्मृति का परिस है। भरत श्रेष्ठ, जब ये परिस लोहतुल्य बुद्धि को स्पर्श करता है, तब बुद्धि केवल सुवर्ण तुल्य ही नहीं परंतु हीरे तुल्य होती है। ऐसी हीरे तुल्य बुद्धि एवं हीरे तुल्य जीवन ब्रह्मा वत्सी प्राप्त करते हैं, जिनके द्वारा परमात्मा एक सत्य धर्म की स्थापना कलयुग के अंतिम चरण में अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर करते हैं। इसके उपरांत ही श्रेष्ठ मानव का श्रेष्ठ सतयुग निर्माण होता है। अतः वर्तमान समय ज्ञान और योग के आधार से लक्ष्य लक्ष्य ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों ने अपनी श्रेष्ठ आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त की है। ऐसी अवस्था प्राप्त करना ही नर से श्रीनारायण एवं नारी से श्रीलक्ष्मी होने का महान पुरुषार्थ है। पार्थ, परमात्मा अवतरण के पश्चात जहाँ ये महान पुरुषार्थ किया जाता है, वहाँ विश्व का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान निर्माण होता है।
हे मधुसूदन, वो कौन सा स्थान है जिस स्थान पर विश्व की समस्त मनुष्य आत्माओं के प्रति तीर्थ स्थान निर्माण होता है?
प्रिय अनुज, उसी सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान का दर्शन कुछ ही क्षणों में तुम्हें करना है, जिसे आबू पर्वत पर स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा निर्माण किया है। धरती का ये दिव्य दृश्य तो देखो पार्थ। यही है विश्व में सबसे पवित्र दिव्य एवं अलौकिक तीर्थ स्थान, जहां चैतन्य स्वरूप पवित्रता का सागर परमात्मा अवतरित होता है, जहां ब्रह्मा कुमारियों के रूप में ज्ञान गंगाएं प्रकट होती है। अतः अन्य मनुष्य इस तीर्थ स्थान को ब्रह्मा कुमारी आश्रम भी कहते हैं। अनुज, ये आश्रम विश्व का महान आश्चर्य है। ये आबू पर्वत पर होने के कारण प्राकृतिक अलंकारों से श्रृंगारित तो है ही, परंतु ज्ञान एवं योग के कारण यहाँ का वातावरण पवित्र, शांत एवं मंगलमय है। पार्थ, ये आश्रम परमात्मा द्वारा प्राप्त हुआ संगम युगी स्वर्ग का उपहार है। इस स्वर्ग के आधार पर ही सतयुगी स्वर्ग निर्माण होता है। सभी ब्रह्मावत्स इस पवित्र भूमि को बड़े प्रेम से मधुबन कहते हैं।
कितना सुंदर, कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। कितना सुंदर, कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। सारे जहाँ से अच्छा है, सारे जहाँ से न्यारा है।
कितना सुंदर, कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। कितना सुंदर, कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है।
सारे जहाँ से अच्छा है, सारे जहाँ से न्यारा है। कितना सुंदर, कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। कितना सुंदर, कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है।
पार्थ, यहाँ आकर सभी आत्माओं की जन्म जन्मांतर की प्रभु मिलन की तृष्णा समाप्त होती है। राजयोग द्वारा यहाँ आकारी एवं निराकारी प्रभु मिलन तो होता ही है, परंतु जब परमात्मा का अवतरण होता है तो साकारी मिलन का आनंद भी सभी ब्रह्मावत्स प्राप्त करते हैं। यहाँ ही पिता श्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा ने यज्ञ के आदि में 400 ब्रह्मावत्सों के साथ 14 वर्ष तपस्या की थी। उस तपस्या के आधार पर ही आज तक ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की इतनी वृद्धि हुई है।
मधुसूदन, वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ कुछ स्मारक मैं देख रहा हूँ?
पार्थ, वो क्षेत्र है पांडव भवन, जहाँ पिताश्री ब्रह्मा की दिव्य स्मृति प्रत्यर्थ शांति स्तंभ की स्थापना की है। इससे यही प्रेरणा प्राप्त होती है कि विश्व का सर्वोत्तम तथा आदर्श मानव कैसे होना है। इस शांति स्तंभ के भूमि तले पिताश्री की अस्थियां भी है। पार्थ, इस शांति स्तंभ पर लिखे हुए महावाक्य प्रेरणादायी एवं अमूल्य है, जो कि ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों ने अपने एक विचार से लिखे हैं। शांति स्तंभ की प्रथम दर्शनी भाग पर लिखा है, पिताश्री के दिव्य स्मृति में जिन्होंने हमारा जीवन कमल पुष्प समान बनाया, जो शिव परमात्मा के साकार माध्यम बनकर मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के निमित्त बने, जो अब भी अव्यक्त रूप में हमारी स्थिति बनाने में तत्पर है। अनुज, द्वितीय दर्शनी भाग पर लिखा है, प्यारे वत्सों, मुक्ति एवं जीवन मुक्ति आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तृतीय दर्शनी भाग पर लिखा है, त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो और निरंतर मुझ पारलौकिक पिता को याद करो। इस राजयोग से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होंगे। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हारा ये ईश्वरीय जन्म हिरेतुल्य है। तथा चतुर्थ दर्शनी भाग पर लिखा है, परमात्मा शिव सभी आत्माओं के परम पिता है। भारत सभी देशों में महान देश है। अबू सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है। ये रहस्य सभी को समझाना। इस प्रकार यहाँ प्रेरणादायी अनेक स्मारक बने हुए हैं। पार्थ, ये वही पवित्र भूमि है जहाँ कई बार परमात्मा अवतरण हो चुका है। यहाँ सभी धर्मों के एवं सभी देशों के मनुष्य तो आते ही हैं, परंतु बड़े बड़े मठाधिपति, आचार्य पंडित एवं वैज्ञानिक भी इस सर्वोत्तम तीर्थ को जानने के लिए आते हैं। पार्थ, बहुत थोड़ी आत्माएं परमात्मा अवतरण को यथार्थ जानती है। भरत श्रेष्ठ, सत्य तो ये है कि जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जिन्होंने कल पहले भी इस ज्ञान को प्राप्त किया था, वही पुनः ज्ञान एवं देवत्व पद प्राप्त करेंगे, परंतु उसके लिए ज्ञान के साथ तपस्या भी आवश्यक है, अर्थात स्वयं को संपूर्ण पावन करने अर्थ ब्रह्मावत तपस्या भी करते हैं।
हे पद्मनाभ, तपस्या तो योगी जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, अतः मैं यही जानना चाहता हूँ कि इन ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों की तपस्या का विशेष समय कौन सा है?
वीर धनंजय, वैसे तो सभी ब्रह्मावत्स कर्मयोगी हैं, परंतु विशेष योग साधना अमृत वेला में होती है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अमृत वेला आरंभ होते ही एक अलौकिक गीत संपूर्ण वातावरण में गूंज उठता है। ये गीत श्रवण करने से अनुभव होता है कि स्वयं भगवान अपने लाडले बच्चों को अत्यंत प्रेम से निद्रा से जगा रहे हैं।
अमृत वेला शुद्ध पवन है, अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडो जागो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडो जागो जागो, मेरे लाडो। केसर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं, धरती जागी अंबर जागा, तुम भी लाडलो जागो मेरे लाडलो जागो जागो मेरे लाडलो जागो जागो मेरे लाडलो जागो।
पार्थ, यह गीत श्रवण करने के उपरांत संपूर्ण मधुबन चैतन्यमय होता है। सभी ब्रह्मावत्स एक सभागृह में संगठन के रूप में अमृत वेला समाप्त होने तक योग साधना करते हैं। साधना समाप्त होने के उपरांत ईश्वरीय महावाक्यों की ज्ञान मुरली सभी श्रवण करते हैं। तत्पश्चात महारथी ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारिया प्रवचन भी करते हैं। यहां तीन प्रकार की सेवाएं हैं, मनसा वाचा कर्मणा। कर्मणा सेवा में मुख्य है ब्रह्मावत्सों के लिए ब्रह्मा भोजन का व्यवस्थापन करना। इस कर्मणा सेवा में परमात्मा की स्मृति अति आवश्यक है। भोजन ग्रहण करने के पूर्व प्रेम एवं श्रद्धा से परमात्मा को भोग अर्पण किया जाता है। तत्पश्चात ही सभी ब्रह्मावत्स परमात्मा की स्मृति में भोजन ग्रहण करते हैं। ये सदा ध्यान रहे कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा अन्न। भोजन के भी तीन प्रकार है, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन एवं तामसिक भोजन। यदि आत्मा शरीर को सात्विक भोजन दे तो उसे सतो प्रधान होने के लिए अधिक काल व्यतीत नहीं होगा। समझ गया अनुज, एक राजयोगी के लिए ब्रह्मा भोजन का कितना महत्व है। पार्थ, यहाँ के सभी अलौकिक एवं प्रेरणादायी दृश्यों को देखकर तुम्हारे नयन पूर्णतः तृप्त हो गए हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। ऐसी है सर्वशक्तिवान परमात्मा की अवतरण भूमि।
हे मिलिंद, हे माधव, इस परमात्मा अवतरण भूमि को देखकर मैं केवल तृप्त ही नहीं परंतु कृतकृत्य हो चुका हूँ। मेरी अंतरात्मा का स्वर यही है कि इससे अधिक पवित्र स्थान विश्व में होना असंभव है।
पार्थ, जब परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी तब यहाँ चरण रखने के लिए भी स्थान नहीं होगा। भरत श्रेष्ठ, तुम्हें भी इस परमात्मा अवतरण भूमि पर अवश्य निवास करना है। कहने का भाव यही है कि तुम्हारा परमात्मा से साकार मिलन हो जाए। ये साकार मिलन ही 21 जन्मों के लिए परमात्मा से सुख शांति पवित्रता का वर्षा प्राप्त कर देगा। कहीं ऐसा ना हो कि परमात्मा के द्वार पर तुम्हें विलंब का फलक देखना पड़े, क्योंकि काल कभी किसी के लिए स्थगित नहीं होता भरत श्रेष्ठ। अतः काल चक्र के अनुसार हमें अपना पुरुषार्थ करना है, यही तुम्हारे लिए आज का अंतिम मार्गदर्शन है। इस प्रकार हे पार्थ, मनुष्य सृष्टि चक्र एवं कल्प वृक्ष का ये महाज्ञान यही समाप्त होता है। चलो पार्थ, पुनः साकार सृष्टि की दिशा में प्रस्थान करते हैं।
हे कमलाकर, प्रस्थान के पूर्व मैं अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करना चाहता हूँ। इस अभूतपूर्व स्वाध्याय में मनुष्य आत्मा अपनी उच्च प्रति की ज्ञानमय अवस्था प्राप्त कर सकती है। हे मुरलीधर, पृथ्वी के इस विशाल रंगमंच पर सभी युगों का ये महानाट्य अलौकिक रीति से अवलोकन कर इस स्वाध्याय की पूर्तता करना ये भी एक अद्वितीय एवं अनूठा अनुभव है। इस अभूतपूर्व स्वाध्याय में कल्प वृक्ष का ज्ञान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कौन जानता है कि इस कल्प वृक्ष का वृक्षपति स्वयं बीज रूप परमात्मा ही है, अर्थात वही इस संसार का मूल रचयिता है। एक धर्म से अनेक धर्म किस प्रकार निर्माण होते हैं एवं अंत में पुनः एक धर्म प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमात्मा कैसे स्थापन करता है, इसका बहुमूल्य ज्ञान कल्प वृक्ष से ही प्राप्त होता है। जिसके बुद्धि में कल्प वृक्ष का ज्ञान होगा उसके मन में ना द्वैत भाव ना द्वेष भाव निर्माण हो सकता है, क्योंकि वो कल्प वृक्ष के प्रत्येक शाखा पर प्रत्येक पर्ण पर अवश्य ही प्रेम करेगा। हे मनोहर, मैं इस कल्प वृक्ष की एक जड़ हूँ, अर्थात इस संसार के प्रति मैं आधार मूर्त हूँ, यही महानता का सर्वोत्तम शिखर है। हे नरश्रेष्ठ, आप तो इस कल्प वृक्ष की मुख्य जड़ है। आपके द्वारा ही परमात्मा इस वृक्ष के निर्मिति का आरंभ करता है। अतः आपको एवं वृक्षपति परमात्मा को मेरा शतशः धन्यवाद, शतशः धन्यवाद।
ओम शांति। हम आपको पुनः ये स्मृति देते हैं कि ये चिंतन नाट्य आरंभ होने के पूर्व ये कहा गया था कि श्री कृष्ण और अर्जुन इनका वर्तमान समय मिलना ये केवल कल्पना है, परंतु इस कल्पना द्वारा ही संपूर्ण सत्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस भाग में आपको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। फलस्वरूप आपका ये निश्चय होना चाहिए कि पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा का ब्रह्मा तन में होने वाला अवतरण ही विश्व के लिए सबसे कल्याणकारी घटना है। आप सभी ने परमात्मा अवतरण भूमि अर्थात ब्रह्मा कुमारी आश्रम का अलौकिक वर्णन भी श्रवण किया। आपके प्रति हम सभी की यही शुभ भावना है कि आप इस ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग का अभ्यास करते करते ही परमात्मा के हृदय सिंहासन पर विराजमान होंगे। ओम शांति।